समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार सुप्रभात श्रोताओं, सुबह की सुनहरी किरणों, ताजी हवा और नई उम्मीदों के साथ स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे में। उम्मीद है कि आपका आज का दिन खुशियों, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरा साथ दे रही है मेरे सहयोगी सरबजीत कौर। श्रोताओं, अगले कुछ पलों में हम बात करेंगे आज के प्रमुख खबरों की, जानेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाओं के बारे में, उन महान हस्तियों को याद करेंगे जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश को नई दिशा दी, और साथ ही सुनेंगे आपके पसंदीदा सदाबहार गीत। तो श्रोताओं तैयार हो जाइए जानकारी, संगीत और यादों से भरे इस खूबसूरत सफर के लिए। सरबजीत, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
जी बिल्कुल वैष्णवी, लेट्स बिगिन द न्यूज प्रोग्राम विद द बिग न्यूज आइटम्स ऑफ द डे टुडे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति की यह यात्रा पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के एक वर्ष के भीतर हो रही है। यह दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
After that update from our correspondent Vaishnavi, let's move to the next big news of the day. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on June the 1st, has been postponed to a later date. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, IAFS4, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said, following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders.
रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। रेलवे ने कहा कि वे यात्रियों, ट्रेनों, स्टेशनों और व्यापक रेल नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सीसीटीवी सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ा रहा है।
एंड टू गिव अ पुश टू टूरिज्म, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द अपग्रेडेड Golden Chariot luxury train for the 2026-27 tourist season, introducing enhanced onboard amenities and promotional offers for travellers. In a statement, IRCTC said that the Golden Chariot, known for showcasing the rich cultural heritage and scenic landscapes of South India, returns in a refreshed form, combining traditional elegance with modern comforts. It added that the three curated itineraries have been announced for the upcoming season.
श्रोताओं, मई की तपती दोपहर और लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने भीषण लू को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में तापमान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार पांचवें दिन कल बांदा जिले में देश का सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राज्य में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जहां पारा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा तप रहा है, जहां अधिकांश इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। बांदा देश में सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 47.6 डिग्री था, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। रात में भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंचने के कारण लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की चेतावनी भी दी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
Meanwhile, the health department in Uttarakhand remains alert in view of the continuously rising temperatures and the impact of heat wave conditions in the state. Special advisories have been issued for children, the elderly and working individuals to take necessary precautions. Medical officials have appealed to people to avoid going outdoors unnecessarily between 11 a.m. and 4 p.m. They have also advised maintaining adequate hydration throughout the day by consuming sufficient water and other fluids to prevent dehydration.
पुलवामा आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था।
The Directorate General of Health Services has issued an advisory regarding Ebola disease for passengers arriving from or transiting through affected countries. According to the advisory, travelers who have visited high-risk countries, including the Democratic Republic of Congo, Uganda, and South Sudan, and are experiencing symptoms such as fever, headache, muscle pain, unexplained bleeding and vomiting, sore throat, have been urged to seek immediate medical attention. We have a report.
Government has said that passengers who have had direct contact with blood or body fluids of a suspected or confirmed Ebola patient must report immediately to the airport health officer or health desk before immigration clearance. The authorities have further stated that any traveler developing such symptoms within 21 days of arrival should promptly seek medical care and inform healthcare authorities about their travel history. Passengers have been advised to cooperate with health screening and public health measures to ensure safety and compliance with international health regulations. With Dipen Anupamish, Akashwani News, Delhi.
युवा कार्य और खेल मंत्रालय पूरे देश में राष्ट्रमंडल खेल दिवस मनाने के लिए फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75वां मेगा संस्करण आयोजित करेगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 24 मई को अहमदाबाद से इन समारोह की अगुवाई करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की भारत की मेजबानी के संबंध में जनता की भागीदारी को बढ़ाना है और साथ ही देश की दीर्घकालिक ओलंपिक महत्वाकांक्षा की दिशा में गति प्रदान करना है।
And now let's take a quick peep in the world of sports. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad last night, chasing a target of 230 runs sent by Gujarat Titans. Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Earlier, put into bat first, Gujarat Titans posted 229 runs for the loss of 4 wickets in the stipulated 20 overs. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad at 7:30 p.m.
श्रोताओ, अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी में 13 वर्षों बाद 15 मई से नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। सरकार द्वारा कराए गए ऑडिट में करीब 7 लाख फर्जी और अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिसके बाद राशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने बारिश के मौसम से पहले राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष अधिकारियों ने कल इस परियोजना पर विस्तृत जानकारी दी, जिसमें स्कूलों में पहले से मौजूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग ढांचों की स्थिति, उनकी कमियों और उन्हें प्रभावी बनाने की कार्य योजना साझा की गई। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में वर्षा जल संरक्षण को मजबूत करना, भूजल स्तर सुधारना और छात्रों तथा समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में वर्षा जल संचयन के लिए गैर सरकारी संगठन एहसास प्रणाली को अपनाया जाएगा, जिसे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में स्वीकृति दी गई थी। इसके माध्यम से छतों से आने वाले वर्षा जल को फिल्टर कर स्टोरेज व बोरवेल से जोड़ा जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और सूखे बोरवेल को भी पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान कई कमियां पाई गईं, जिसे दिल्ली सरकार ने दूर करने के लिए विस्तृत सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत वर्षा जल पाइपों को उचित चैनलों से जोड़ा जाएगा, जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई होगी। समाचार के लिए आदित्य के साथ शिवांग मिश्रा।
And listeners, let's see what's the news from Chennai. The Department of Posts released a special cover under the theme of 70 years of energizing the nation with sustainability to commemorate NLC India's limited NLCIL 70-year journey. The special cover highlights NLCIL's enduring spirit and its contribution to nation building and sustainable energy development over the past 7 decades. The Postmaster General, Saeed Rashid, released the special cover, and NLCIL Chairman and Managing Director, Prasanna Kumar Motupalli, received the first cover. Prasanna Kumar said that the targets set for NLCIL, doubling the mining production, tripling the thermal power generation and increasing solar power generation sevenfold, and a capital expenditure of rupees 1.25 lakh crore, all of which required concerted effort. And Vaishnavi, what's the news from the financial capital of the country, Mumbai?
जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस वर्ष का खरीफ सीजन अलनीनो, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की स्थिति के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्याप्त बीज भंडार उपलब्ध है और अधिकारियों को समय पर फसल ऋण, जल संरक्षण कार्यों में तेजी और कृषि में डिजिटलीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मुंबई की बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों और संस्थानों को रोजाना वैज्ञानिक तरीके से कचरा निपटान के निर्देश दिए हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें कचरा बीएमसी को सौंपने के लिए प्रति टन 812 रुपए शुल्क देना होगा। 20,000 वर्ग मीटर से बड़ी सोसाइटियां और रोज 100 किलो से अधिक कचरा पैदा करने वाले संस्थान बल्क वेस्ट जनरेटर माने जाएंगे। ऐसे सभी संस्थानों को 15 दिनों के भीतर SBM पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
And the Karnataka High Court has extended its interim order till June the 2nd, restraining Transport Corporation employees from proceeding with their proposed strike. A vacation bench comprising Justices Suraj Govindraj and K. Manmadha Rao said it will review the outcome of the conciliation meeting scheduled for May 25th at the next hearing. The court is hearing a PIL filed by Bengaluru residents C. Vedavati and H. V. Sridhara. Earlier on May 19, the court had stayed the proposed bus strike planned for May 20th. Deputy Chief Minister of Karnataka, D.K. Shivakumar, said the detailed project report, DPR, for the Mekedatu project will soon be submitted to the centre and Bhumi Puja will be conducted after central government approval. Speaking at Kolegal and Madhyaranga temple, he said land is being identified to compensate for forest areas likely to be submerged. Referring to the Kaveri issue, he said the Supreme Court has ruled that Tamil Nadu cannot object to the Mekedatu project and that the Central Water Commission will decide the matter.
और श्रोताओं अब रुक करते हैं बेंगलुरु से कोलकाता की ओर. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है. 3 सदस्यों की एसआईटी का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे. न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है.
And Telangana government is using digital creators and influencers to promote tourism, both globally and locally. Tourism Minister Jopalli Krishna Rao made this announcement at a tourism creators meet yesterday. The minister said tourism is a major driver of economic growth and employment. He urged influencers to showcase Telangana's scenic destinations, heritage sites and cultural art forms to audiences worldwide. The minister also noted that travelling doesn't require high spending. People can reduce expenses and visit local attractions to overcome stress and improve mental health. The government plans to develop unused hotels and tourism lands to enhance visitor experiences and increase revenue. Cleanliness and basic facilities will be ensured at all tourist spots.
श्रोताओ अब बात करते हैं आज के मौसम की. राजधानी दिल्ली में आज भी लू चलने का अलर्ट है. बात करें तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. और बात करें कोलकाता की तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
Listeners, Chennai is expected to have thunderstorm accompanied with lightning, heat wave. The minimum temperature was 31 degrees Celsius and the maximum may go up to 41 degrees. Bengaluru is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain, thunderstorm, dust storm. The temperatures will hover between a minimum of 30 degrees and a maximum of around 41 degrees Celsius.
और सरबजीत इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और श्रोताओं को बताएं कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ है, आइए बात कर लेते हैं पहले कि आज के दिन की उस विशेषता के बारे में जो सिर्फ प्रकृति से ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल से भी जुड़ी हुई है.
जी बिल्कुल. एंड आई एम श्योर यू आर स्पीकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी डे.
जी बिल्कुल.
एंड वैष्णवी, इफ आई मे ऐड हियर दैट फ्रॉम द एयर वी ब्रीद टू द फूड वी ईट एंड द वाटर वी ड्रिंक, everything depends on biodiversity. But this natural wealth is under pressure. So many reasons: deforestation, pollution, climate change, rapid urbanization. We need, as human beings, we need to think about this.
जी बिल्कुल. और आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है. कई जीव जंतु और पक्षियों की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं. इसका असर सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं बल्कि इंसानी जीवन पर भी पड़ रहा है.
सो यू नो दिस इज द बिग क्वेश्चन बिफोर अस वैष्णवी, व्हाट वी कैन डू इन आर ओन स्मॉल वेज. एंड इवन स्मॉल एक्शंस कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग वाटर, अवॉइडिंग प्लास्टिक, प्रोटेक्टिंग लोकल इकोसिस्टम्स. आई एम श्योर दीज थिंग्स टू पुट टुगेदर would make a lot of big difference.
जी बिल्कुल. श्रोताओं, जैव विविधता का संरक्षण सिर्फ पर्यावरण बचाने का मुद्दा नहीं है बल्कि हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है. तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि प्रकृति की इस खूबसूरत धरोहर को बचाने में अपना छोटा सा योगदान जरूर देंगे, क्योंकि धरती तभी मुस्कुराएगी जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी.
Absolutely. So when biodiversity thrives, humanity thrives.
जी बिल्कुल. और अब प्रकृति, पर्यावरण और जीवन के इस खास संदेश के बाद बढ़ते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां 22 मई से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने दुनिया को नई सोच और नई पहचान देने का काम किया. आइए जानते हैं आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में.
यस ऑफ कोर्स वैष्णवी. 22 मई 1805 Governor General Lord Wellesley issued a formal decree establishing a permanent financial provision and administrative security framework for the Mughal Empire in Delhi under the British protection.
1906 में राइट बंधुओं को उनकी उड़ान भरने वाली मशीन के लिए आधिकारिक तौर पर अमेरिकी पेटेंट दिया गया जिसने विमानों के नियंत्रण प्रणाली की नींव रखी.
1936 on this day Lord Brabourne laid the foundation stone of the historic Brabourne Stadium in Bombay establishing India's very first permanent world class sporting stadium infrastructure.
1963 में आज ही के दिन भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान और गाइडर रोहिणी सफलतापूर्वक कानपुर के आसमान में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी.
1980 में द लेजेंडरी आर्केड गेम पैकमैन वॉज ऑफिशियली रिलीज्ड बाय नामको इन जापान क्विकली बिकमिंग अ ग्लोबल पॉप कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फिनोमिनन.
1989 में भारत ने चांदीपुर के ओडिशा से अपनी पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का पहला सफल परीक्षण कर उन्नत मिसाइल तकनीक वाले विशिष्ट देशों में प्रवेश किया था.
22 मई 1990 नॉर्थ येमेन एंड साउथ येमेन ऑफिशियली मर्ज्ड टू फॉर्म द यूनिफाइड रिपब्लिक ऑफ येमेन एंडिंग डेकेड्स ऑफ जियोपॉलिटिकल डिवीजन.
और 2007 में आज ही के दिन भारतीय मूल के प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे के राजा द्वारा गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
22 मई 2012 द टोक्यो स्काई ट्री स्टैंडिंग एट अ मैसिव 634 मीटर्स ऑफिशियली ओपन टू द पब्लिक इन जापान एज द टॉलेस्ट सेल्फ सपोर्टिंग टावर इन द वर्ल्ड.
और श्रोताओं अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर और बात करते हैं उन प्रमुख व्यक्तित्वों की जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है.
वैष्णवी टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट विजनरी राजा राम मोहन रॉय. बॉर्न इन 1772 इन बंगाल, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ विजनरी हु स्ट्रांगली फॉट अगेंस्ट सोशल इवल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. Raja Ram Mohan Roy believed in reason, education, equality at a time when such ideas were rare.
जी बिल्कुल. और राजा राम मोहन राय मानते थे कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है. इसी सोच के साथ उन्होंने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया. संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था. उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर धार्मिक और सामाजिक सुधारों का नया आंदोलन शुरू किया. उनकी सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी बल्कि वे चाहते थे कि भारतीय समाज दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े.
And Raja Ram Mohan Roy, if I may say so, was a true reformer who lit the path of social awakening in India. He channelized and focused people towards women's rights, modern education and freedom of thought. Listeners, we are also paying tributes today to Sir Arthur Conan Doyle. Today is his birth anniversary, a British writer and physician. Sir Arthur is best known for his 4 novels and 56 short stories about the fictional consultative detective Sherlock Holmes and his assistant Dr. Watson.
इतिहास, दर्शन और भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने वाले महान चिंतक गोविंद चंद्र पांडे की आज पुण्यतिथि है. वे 20वीं सदी के प्रमुख इतिहासकारों, संस्कृतिज्ञों और सौंदर्य शास्त्रियों में गिने जाते थे. भारतीय इतिहास और संस्कृति पर उनका अध्ययन बेहद गहरा और प्रभावशाली माना जाता है. उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता, बौद्ध दर्शन और भारतीय चिंतन पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी. उनकी लेखनी में ज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति की आत्मा भी दिखाई देती थी. वे मानते थे कि इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि समाज की चेतना का दर्पण होता है.
And Vaishnavi, if I'm not wrong, at the beginning of the program, you promised the listeners that you'll bring a collection of nice numbers, nice lovely songs. So let's first of all remember the great Homi Vadia. Today is his birth anniversary, film director and producer. We've brought a short collection of beautiful numbers from his movies.
Teri duniya se dur chale ho ke majboor hame yaad rakhna
jao kahin bhi sanam tumhe itni pasand hame yaad rakhna
jo mati hai
नजर झूमता है प्यार, ये नजर छीन कर ले गई करार,
ये नजर छीन कर ले गई करार, झूमती है नजर झूमता है प्यार,
ये रातें
आहा,
ये बातें
ओहो,
ये रातें
आहा,
ये बातें
ओहो,
मौसम क्या
सबा, उनसे कह जरा क्यों हमें बेकरार कर दिया,
दिल हमारा जैसे प्यारा क्या मुझे तुम पे निसार कर दिया, दिल हमारा जैसे प्यारा क्या मुझे तुम पे निसार कर दिया,
ऐ सबा उनसे कह जरा।
Vaishnavi, beautiful romantic numbers. So since the tone is all set, we are also remembering today Victor Marie Hugues. Today is his death anniversary, a French romantic author, poet, essayist, playwright, journalist, human rights activist and politician. His most famous works are the novels The Hunchback of Notre Dame and Les Miserables.
भारतीय उद्योग जगत को नई सोच और मजबूत नेतृत्व देने वाले प्रसिद्ध उद्यमी सोहराब फिरोज शाह गोदरेज की आज पुण्यतिथि है। वे गोदरेज समूह के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल थे। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता ने गोदरेज समूह को देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह में शामिल किया। उन्होंने उद्योग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि व्यवसाय सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं बल्कि समाज के विकास का भी जरिया होना चाहिए। व्यापार जगत में की ही बात हो रही है तो व्यापार जगत में ईमानदारी, दूरदृष्टि और सफलता की मिसाल गोविंद राम सेकसरिया की आज पुण्यतिथि है। उन्हें स्वतंत्र पूर्व भारत के सबसे सफल व्यवसायों में गिना जाता था। उन्होंने मुख्य रूप से कपड़ा, जूट, चीनी और कई बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में अपना व्यापार स्थापित किया था। उस दौर में जब भारतीय उद्योगों पर विदेशी कंपनियों का दबदबा था, तब गोविंद राम सेकसरिया ने भारतीय व्यापार जगत को मजबूती देने का साहसिक कदम किया। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक कार्यों को सहयोग दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर अवसर मिल सके।
And listeners, we are also extending our good wishes to some great names who have birthdays today. Erappalli Ananth Srinivas is a former Indian cricket player and he was a spin bowler specializing in off-spin and a member of the Indian Spin Quartet. He has received the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award in 2004, the highest honor bestowed by BCCI on a former player. We are also wishing a very happy birthday to Rajit Kapoor. He is a theatre actor and director and known for his portrayal of Mahatma Gandhi in the 1996 film The Making of the Mahatma, for which he won the National Film Award for Best Actor. And today is also the birthday of Novak Djokovic, the Serbian professional tennis player. And Djokovic has been ranked as world number one in men's singles by the Association of Tennis Professionals for a record 428 weeks.
श्रोताओं, कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जिनकी धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा को अपनी मधुर धुनों से सजाने वाले लोकप्रिय संगीतकार राम लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था और 80 से 90 के दशक में उनके संगीत ने हिंदी फिल्मों को नई मिठास और नई पहचान दी थी। उनकी धुनों में भारतीय संगीत की आत्मा, सादगी और भावनाओं की गहराई साफ महसूस होती थी। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और पत्थर के फूल जैसी फिल्मों में दिए गए उनके गीत आज भी हर पीढ़ी के पसंदीदा है। उनके गीत की खास बात यह थी कि हर धुन सीधे दिल को छू जाती थी। प्यार, अपनापन, दोस्ती और रिश्तों की भावनाओं को उन्होंने अपने संगीत में बेहद खूबसूरती से पिरोया था। और आइए अब आपको सुनाते हैं राम लक्ष्मण की उन्हीं सदाबहार धुनों को जिन्होंने हिंदी सिनेमा को के संगीत को कई यादगार पल दिए।
जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा।
श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और सरबजीत को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।